हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अनाही रुहान की बात सुनकर कन्फ्यूजन से बालकनी की तरफ देखती है, जहाँ एक सोफा था, उसके पास कारपेट बिछा था, एक छोटी सी टेबल थी जिस पर एक छोटा सा फ्लावर वास रखा था, सामने से बालकनी खुली हुई थी और कमरे की तरफ उसमें एक ग्लास डोर लगा हुआ था। जुलाई के इस महीने में शाम के वक्त रिमझिम बारिश ने भी अपनी झड़ी लगा रखी थी। वो बारिश बहुत ज्यादा धीमी थी, बिल्कुल उसकी बूंद की तरह, जिससे आधी बालकनी लगभग भीग चुकी थी। अनाही ने जल्दी से रुहान की तरफ देखते हुए कहा, पर रुहान जी, मैं वहाँ। रुहान ने अपना सहरा उतारकर टेबल पर रखा और फिर शेरवानी के बटन ओपन करते हुए बोला, आई डोंट लाइक डिस्टर्बेंस, प्लीज वहाँ चली जाओ, मुझे और परेशान मत करो, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान हूँ इस शादी से। अनाही के दिल से अजीब सी आवाज आई थी, जहाँ तुम शांति ढूंढने की कोशिश कर रही हो, वहाँ सिर्फ बेचैनी की खामोशी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अनाही ने एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, मैं कपड़े तो चेंज कर सकती हूँ ना। रुहान अब उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, वो तेज कदमों से रूम से अटैच्ड अपने केबिन में चला गया था, जहाँ क्या रखा था ये सिर्फ वही जानता था। अनाही ने भी उसके जवाब का इंतजार नहीं किया और जल्दी से वार्डरोब की तरफ बढ़ गई, जहाँ पहले से उसके लिए कपड़ों का इंतजाम कर रखा था। अनाही ने हल्के पैरेट कलर का सूट निकाला और फिर उसे लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। ये कमरा बिल्कुल वेल सेटल्ड था, जहाँ जो होना चाहिए वहाँ वही था। इन सबको देखकर अनाही काफी ज्यादा इम्प्रेस हुई थी। कम से कम रुहान अपने कमरे को तो ढंग से रखता है, वरना विहा तो इस मामले में भी किसी लायक नहीं है, उसे सब कुछ मैसी रखना पसंद है। वही रुहान उस कमरे में जाते ही वहाँ रखे काउच पर बैठकर अनाही के बारे में सोचकर खुद में बड़बड़ा रहा था। कितना एटीट्यूड है, अभी तक अपना चेहरा भी नहीं दिखाया, हूँ मैं कौन सा मर रहा हूँ उसका चेहरा देखने के लिए। इतना बोलकर उसने एक सिगरेट निकाली और उसे जलाते हुए अपने डार्क ब्राउन होठों के बीच फंसा लिया। रुहान की आंखें गहरी काली थीं, जिनमें कोई भी डूब सकता था। हल्के ब्लैक कर्ली बाल जो कुछ हमेशा उसके माथे पर बिखरे रहते हैं। 6'2" की हाइट के साथ 8-pack एब्स वाली फिजीक, जिस पर उसके कॉलेज की हर लड़की मरती है। फिलहाल रुहान अपने बीकॉम के फाइनल ईयर में था और कॉलेज में काफी पॉपुलर भी था। रुहान अब कल के दिन के बारे में सोच रहा था, कॉलेज वाले अब उसे शादीशुदा बोल के तो नहीं चिढ़ाने लग जाएंगे। वही वेदांत और विहा का कमला। वेदांत ने जैसे ही गुस्से में सवाल किया कि आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है, उसकी नज़र विहा के उस खूबसूरत से चेहरे पर एक पल के लिए ठहर गई। उसकी खूबसूरत नीली झील सी आंखें फिलहाल थकान और नींद के कारण बोझिल होकर हल्की झुकी हुई थीं। चेहरे पर वो बड़ी सी नथ और मैचिंग रखरे के साथ उसका डोल जैसा गोल चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। उसके बाल भूरे और घुंघराले थे, जिनकी लटें इतनी बार सीधी करने के बावजूद मुड़कर अभी उसके गाल को छू रही थीं। वेदांत उसके नैन नक्श को काफी बारीकी से देख रहा था कि अचानक उसके कानों में विहा की आवाज़ आई, जिससे वो होश में आया। विहा ने मासूमियत से पलके झुकाते हुए कहा, अपना हस्बैंड और क्या समझूंगी मैं आपको। वेदांत को अफसोस हुआ अपने इस रवैये पर, वो कैसे किसी लड़की को देखने में इतना खो सकता है। उसने एक हाथ से अपने माथे को रगड़ते हुए कहा, ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो, जब से देख रहा हूँ तब से बस प्रिंसेस ट्रीटमेंट ले रही हो तुम मुझसे। कभी कंधे पर सर रख के सो रही हो तो कभी पूरी गाड़ी में रो रो के मेरा दिमाग खराब कर रही थी, और अब देखो सीधा जाकर मेरे बेड पर पड़ चुकी हो जैसे कि तुम्हारा हो। वेदांत को भी नहीं पता, वो अपने ऊपर आया गुस्सा अब विहा पर निकाल रहा था। उसने जब देखा विहा कुछ नहीं बोल रही है तो फिर से गुस्से में बोला, अनजान जगह किसी का दिल इतनी जल्दी नहीं लगता है जितनी आराम से तुम आकर सोई हो। विहा ने आंखें गोल गोल घुमाते हुए कहा, वेदांत आप क्या बोल रहे हैं, सब कुछ मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, आपको किस बात से प्रॉब्लम है। मैं रो रही थी इस बात से, क्या मैं आपके कंधे पर सर रखकर सो रही थी इस बात से, या फिर अभी मैं आपके बिना पूछे आपके बेड पर सो चुकी हूँ इस वजह से, या फिर कैसे मुझे अनजान जगह पर नींद आ रही है इस वजह से। मैंने आपको इतने सारे रीजन दिए, अब जल्दी से इनमें से एक को पिक करके बताओ, आपको कौन सी दिक्कत है, मैं उसे अभी सुलझा दूंगी। वेदांत मुंह खोल विहा को देख रहा था, कितनी अजीब लड़की थी ये, क्योंकि सब कुछ विहा ने बहुत ही मजाकिया तरीके से कहा था, जिसे देखकर किसी को भी हंसी आ सकती थी, लेकिन वेदांत को सिर्फ चिढ़ मच रही थी। वेदांत ने उसके कंधों पर अपनी पकड़ कसते हुए झल्लाकर कहा, मैं तुम्हें आज ही ये बता देना चाहता हूँ कि इस शादी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था और तुम मुझे कतई पसंद नहीं हो। मुझे तो तुम्हारी बहन पसंद थी, उसकी सादगी पसंद थी। तुम्हारा ये बचपन मुझे एक आँख नहीं भाता है, तो मेरे सामने ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। और हमेशा अपने काम से काम रखना है, मेरी चीज़ों को हाथ लगाने की भी कोशिश मत करना। और वैसे भी तुम इतनी पिद्दी सी तो हो, उस सोफे पर आराम से सेट हो जाओगी, तो जाओ अच्छे बच्चों की तरह वहाँ जाकर सो जाओ। वेदांत ये सब बोल ही रहा था कि अचानक उसका फ़ोन बज उठा और वेदांत और भी ज़्यादा चिढ़ते हुए अपनी जेब से फ़ोन निकालकर फ़ोन पिकअप करते हुए बोला, हाँ जूली, बोलो क्या प्रॉब्लम है? सामने से एक लड़की ने बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज में कहा, वी आर रियली सॉरी सर, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, पर अगर कल ही आपकी शादी हुई है तो आप मॉर्निंग में इंटरव्यू लेने वाले हो या नहीं, बस ये पूछना था। उसके हिसाब से मैं आपका शेड्यूल रेडी करूँगी। अगर इंटरव्यू नहीं लेना है तो मैं उन लोगों को वेट करने के लिए बोल दूँ। वेदांत विहा के पास से उठा और अपने माथे पर दो उंगलियाँ रब करते हुए बोला,
एक काम करो, शेड्यूल मत बनाना मेरा, लेकिन जो इंटरव्यू मुझे लेना था वो इस टाइम पर रखना। उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों से बिजनेस में लॉस हो रहा है। मैं उसे और ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। मेरी लाइफ में उससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, ये शादी भी नहीं।